आगे चलते हैं पेज 103 या 104। जीनतुन निसाई, औरतों का बनाओ सिंगार। अब तो ब्राह रास्त ही आपकी बात आ गई। इनडायरेक्टली तो पूरा टॉपिक ऐसे लग रहा था कि औरतों के लिए, लेकिन यहाँ खास तौर पे एक चीज है, इसको देखेंगे। जीनत किसको कहते हैं? ब्यूटीफाई को, खूबसूरत करना। एक चीज अच्छी थी लेकिन आपने उसको मजीद अच्छा करना चाहा। उसकी क्या हदें हैं, क्या लिमिट्स हैं, इसके ऊपर क्या हो सकता है क्या नहीं, इसको देखने की जरूरत है। क्योंकि फीस जमाना ये भी डिस्प्यूटेड इशू है। कुछ ने इसमें हदों को पामाल किया, जाके आंखों की शेप तक बदलवा दी, नाक की हड्डियां कटवा दी। कुछ में ने इसमें किसी भी चीज को जो देखा तो कहा इससे ज्यादा कोई गलत तरीकाकारी नहीं है। तो देखिए कि अल्लाह ने, वही बात है कि दीने फितरत है, अगर भूख लगती है ना तो खाना खाना गुनाह नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर नींद आती है ना तो सोना गुना नहीं हो सकता, अगर भूख लगती है ना तो खाना गुना नहीं होगा, और अगर नींद आती है ना तो सोना गुना नहीं हो सकता। ये मान लीजिए अगर औरत की तबीयत में जीनत करना, सजना संवरना, तो ये गुना नहीं हो सकता। गुना क्या है इसका? गैर मुनासिब तरीके से इजहार करना। तो ये भी बड़ा अहम टॉपिक है आपके मेरे लिए। इसमें भी हम देखेंगे कि क्या हदें क्या लिमिट्स हैं, लेकिन पहले हम सारी अहदीस को पढ़ लेते हैं। ज़ीनतुन्निसा, औरतों का बनाव सिंगार करना। फितरी तख्लीक को गैर फितरी तख्लीक में तब्दील करने वाले तमाम अफाल शैतानी फेल हैं। दलील सूरत निसा आयत 119, 119। वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्न आज़ान लनामी वला आमुरन्नहुम फला युगैरुन्न खल्कल्लाही वमन यत्तखिज़ शैताना वलीयम मिन दूनिल्लाही फकद खसीरा खुसरानम मुबीना। शैतान ने अल्लाह से कहा, मैं लोगों को गुमराह करूंगा, इन्हें झूठी उम्मीदें दिलाऊंगा, इन्हें हुक्म दूंगा कि वो जानवरों के कान काटें और इन्हें मज़ारों दरबारों के नाम पर मंसूब करें, और इन्हें हुक्म दूंगा कि वो अल्लाह की बनाई हुई शक्ल में रद्दोबदल करें। जिसने अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बना लिया, वो सरी खसारे में पड़ गया। अब आप देखिए ये बड़ी मारूफ आयत है इस मामले में। तो इसमें अगर एक एक चीज को हल्का सा हम देख लें, तो पहली चीज जो शैतान ने कही कि मैं भटकाऊंगा, उम्मीदें दिलाऊंगा, ये तो वाज़े है शैतान का काम ही है। हक रास्ता नहीं नजर आएगा, इर्द गिर्द के रास्ते नजर आने लगेंगे। फिर उम्मीदों के जाल बुनता है, ये भी सब देखते हैं। लंबी उम्मीदों पर हम गुनाह करते जाते हैं, तौबा की उम्मीद पर गुनाह करते हैं, और कल जीने की उम्मीद पे हम सारी दुनिया की चीजें जमा करते रहते हैं। फिर वाला आम और हुक्म दूंगा किस बात का? फल युबत्ती कुन्ना आजा नलना। जानवरों के कान काटना असल में अरबों की एक आदत थी। करते क्या थे कि जब कोई जानवर पैदा होता तो उसका कान चीर कर उसको बुतों के नाम पे आजाद छोड़ देते थे। जैसे आज भी आपने इंटीरियर में और गांव देहातों में देखा होगा कि लोग कब्रों पे, मज़ारों पे कुछ जानवर, कुछ तो अपने बच्चों तक को छोड़ आते हैं, तो ये चीज़ भी शिर्क में आती है। फिर अगली चीज़ वाला आमुरन्नहु फल युगैरुन्न खल्कल्ला। असल में हमारे टॉपिक की ये बात है, अल्लाह की बनाई हुई शक्ल में रद्दो बदल में तब्दीली करेंगे। अब ये क्या है, ये क्या तब्दीली है, कैसे होती है? आप देखिए कि सीधी सी बात है, शैतान जिंदगी का मकसद ही बदल देता है। सबसे पहली तब्दीली जो खल्क अल्लाह में शैतान कराता है ना, प्रायोरिटीज बदल देता है। हमें दुनिया में आखिरत के लिए जीना था, हमें इस दुनिया के लिए जीने में लगा देता है। फिर औरत को मर्द और मर्द को औरत बनाने की कोशिशें करता है। फिर आप देखिए फितरत का असूल है कि औरत बच्चे पैदा करे, और शादी का मकसद औलाद का हसूल। शैतान का एक ये भी काम है कि वो औलाद के पैदा करने को एक बहुत बड़ा मुश्किल काम बना देता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि खल्क में तब्दीली की और बहुत सारी किस्में हैं जो इस वक्त मौजू से मुनासिबत नहीं रखती, लेकिन यहाँ इस आयत को हदीस में जो इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है कि इंसान की जो साख्त अल्लाह ने बना दी है, आपकी मेरी, उसमें कोई ऐसी तब्दीली कराना कि एक तो वो इंसान के लिए नुकसानदेह खतरनाक है, और दूसरी ये बात है कि उसके साथ धोखे का सामान पैदा होता है। मसलन फितरी तौर पर मेरी आंखें काली हैं, शैतान कहेगा तुम ब्लू लेंजेस लगाओ। अच्छा, अब जब मैंने ब्लू लेंजेस लगाए तो जो मुझे फर्स्ट टाइम मिलेगा उसको लगेगा मेरी आंखें ब्लू हैं, धोखा हो सकता है। बाज दफा सुना भी कि रिश्ते हुए, बड़े खुशी से हुए। शादी के अगले ही दिन रिश्ता टूट गया। क्यों? कि रिश्ता हुआ ही सोच के साथ था कि लड़की की आंखें ब्लू हैं, और लड़के का एक ही वीक पॉइंट था, और जब शादी के बाद पता चला ये लेंस है तो उसके तो सारे ख्वाब टूट गए। सवाल पैदा होता है अब ये है। इसी तरह से आप देखिए, पलकों में पलकें जमाना, नकली पलकें। कोशिश तो यही की जाती है ना कि असली दिखे, होती तो असली नहीं है। तो एक असूल लिख लें इस पे, हर वो आराइश या जिबाइश जिसमें यानी नकल पे असल का शुबा हो वो मना है। जिसमें दो तीन चीजें तो आपको बता ही दी। अब इस तब्दीली में से एक जनरल रूल समझ के कि जो चीज नकली है लेकिन असली लगे, बालों में बाल मिला लिए, किसी ने समझा इसके बड़ी लंबी चुटी है बाद में नकली थी, ये नाजायज है। बाकी आपने अगर रंग लगाया हुआ सबको दिख रहा लगाया हुआ, अगर आपने अपने चेहरे पे कोई चमकती हुई चीज लगाई है दिखती है, सबको दिख रहा है कि मेकअप किया हुआ है, शक्ल तो बदलती है बट वो बदली हुई शक्ल धोखा नहीं देती, तो ये जायज है। ठीक है, अब आगे इन्हीं में से कुछ चीजों की आपको डिफरेंट सब हेडिंग्स दिखेंगी। मसलन, बालों में मसनू बाल यानी विग लगाने वाली औरत या मर्द पर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से रहमत से दूरी है। ब्यूटी पार्लर में गैर शरई बनाव सिंगार करने और करवाने वाली औरतों पर अल्लाह और उसके रसूल दोनों की तरफ से लानत है। जिस्म पर अनमिट नक्शो निगार बनाने वाले, क्या कहते हैं इसको आजकल, टैटूस, यानी जो खत्म नहीं किए जा सकते, अनमिट नक्शो निगार बनाने वाली औरत पर अल्लाह ताला की लानत है। जिस्म पर अनमिट नक्शो निगार बनवाने वाली औरत पर भी अल्लाह की लानत है। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, यहाँ मेरे साथ पढ़िए। अमल के अतबार से ये हदीस सरासर औरतों के लिए आम तौर पे, और ये मुश्किल लगती है, इस सोच से पढ़ते हैं शायद इसके पढ़ने की बरकत से हमारे लिए अमल करना आसान हो जाए। क्या फरमाया आपने, लानल्लाहुल अलबासिलता वलमुस्तौसिलता वलवाशिमता वलमुस्तौशिमता। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है इन औरतों पर जो बालों में जूड़ा लगाएं, दूसरी औरतों को या खुद लगवाएं। नीस लानत फरमाई जिस्म गूदने या गुदवाने वाली पर। इसे बुखारी ने रिवायत किया। इसी तरह अगली रिवायत, अन अस्मा बिन्त अबी बकर रदी अल्लाह अन्हा कालत लानल्लाहुल वासिलता वलमुस्तौसिलता। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई जूड़ा लगाने और लगवाने वाली औरतों पर। इसे बुखारी ने रिवायत किया। सवाल है कि कभी को बीमारी की वजह से बाल झड़ जाएं तो क्या किया जाए? उसका आगे जवाब है, बीमारी की वजह से या ऐब छुपाने के लिए भी मस्नूई बाल या विग लगाने की इजाजत नहीं है। अन अस्मा रदियल्लाहु अन्हा कालत सालत इमरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इब्नती असाबत हल हसबतु فَمَّرَقَ شَعْرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَسِلُ فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاسِلَةَ وَالْمَوْصُلَ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک عورت نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کو چیچک نکلی ہے، سکن ڈیزیز ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، جسم پہ چھوٹے چھوٹے ایسے پانی والے دانے نکلتے ہیں، بعد میں پھر اس کے نشان بھی ہو جاتے ہیں اور بال بھی جھڑ جاتے ہیں۔ کون سی چیچک؟ جس سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، اس کا نکاح کر چکی ہوں، کیا اسے جوڑا لگا دوں، یعنی شادی کے دن تیار کرتے ہوئے نقلی بال لگوا لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جوڑا لگانے اور لگوانے والی دونوں عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یاد رہے کہ بالوں میں جوڑا لگانے کی ممانعت ہر قسم کے بالوں کے لیے، خواہ وہ انسانی بال ہوں یا کسی جانور کے ہوں، خواہ مصنوعی بال ہوں، واللہ عالم بالصواب، کیونکہ اصل پہ نقل کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بالوں میں مصنوعی بال یا وگ لگانا یہود کا عمل ہے، اور بالوں میں وگ لگانے والی عورت یا مرد دھوکے باز ہے۔ اب میں اور آپ کچھ کہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، لیکن آپ دیکھ لیں کتنی کلیئر واضح حدیث کی باتیں ہیں۔ عن سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ قال قدیم معاویۃ المدینہ آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزورة يعني الواصلة في الشعر. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آخری بار جب مدینہ تشریف لائے تو جمعہ کا خطبہ دیا اور مصنوعی بالوں کا ایک جوڑا نکالا اور فرمایا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کام یہودیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا اس لیے کہ رسول اللہ نے جوڑا لگانے والی عورتوں کو دھوکے باز فرمایا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. یاد رہے کہ بالوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز مثلاً رومال اسکارف اونی یا سوتی یا ریشمی دھاگا جسے عرف عام میں پراندہ کہا جاتا ہے بالوں میں باندھنا یا لگانا منع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کسی قسم کے دھوکے کا سامان نہیں ہے. تو اصل آپ اگر ایک اصول سمجھ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے باقی باتیں سمجھ آ رہی ہیں. دھوکہ نہ ہو ادروائز کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالوں میں جوڑا لگانے والے کا عمل پوری قوم کو تباہ کرنے والا عمل ہے. عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما حلقت بنو اسرائیل حین اتخذ ہذہ نساءہم. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنو اسرائیل اس لیے برباد ہوئے کہ ان کی عورتوں نے یہ جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا تھا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یہاں تک آتا ہے کہ جب ان کی عورتوں کے لیے بھی اپنے بالوں کو کھولنا جائز قرار نہ تھا تو انہوں نے اپنے سارے بال شیو کروا دیے اور جوڑا لگا لیا. پھر دکھانے لگ گئیں. کہا کیوں؟ کہا دیکھو نا اصلی بال دکھانا منع ہے, ہمارے تو نقلی ہیں. یہ تعویل ہے. جیسے وہ ہیلا سازی کی تھی نا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کی, اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آتا. پھر اسی طرح ایک اور ایشو بالوں کے بعد بھووں کا. بھووں کو خوبصورت بنانے کے لیے بال اکھڑوانے یا صاف کرانے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہے. دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے انہیں باریک کروانا یا ان کے درمیان مصنوعی خلا پیدا کروانے والی عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے. دوسری عورتوں کی بھویں خوبصورت بنانے والی عورت اور دانتوں کو باریک یا گھسانے والی عورت پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعن اللہ المتنمسات والمتوشمات والمتفلجات اللاتی یغیرن خلق اللہ عز و جل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں, جسم گدوانے والیوں اور دانتوں کو رگڑ کر کھلا کرانے والیوں پر لعنت فرمائی, کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں. اسے نسائی نے روایت کیا. اور ایک اور روایت اس سے ملتی بھی. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن اللہ الواشماتی والمستوشماتی والمتنمساتی والمتفلجاتی للحسن المغیراتی خلق اللہ تعالی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خوبصورتی کے لیے اپنا جسم گدوانے والیوں, چہرے سے بال اکھاڑنے والیوں اور دانتوں کو رگڑ کر کشادہ کرنے والیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. اہل علم نے خوبصورتی کے لیے چہرے کے کسی حصے کے بال اکھیڑنے یا صاف کرانے کو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی قرار دیا ہے, لہٰذا یہ منع ہے. اگر عورت کے چہرے پر داڑھی یا مونچھ کی طرح بال اگائیں تو انہیں زائل کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی چہرے سے بال اتارنے میں یہ جگہ فور ہیڈ ماتھے, یعنی یہ بال جس کو آپ کہیں کہ یہاں جس کو عرف عام میں پلکنگ کہتے ہیں, یہ منع ہے. اس کے علاوہ اگر جسم پہ کہیں بھی کوئی بال ہیں یا چہرے پہ تو اس کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ نے حضرت عائشہ کو بھی ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میل کو جس حد تک صاف کرو, کیونکہ عورت کی نسوانیت متاثر ہو رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام پلکنگ کا اتنا کیوں دشمن ہے؟ جب یہ سائنسدان کہہ دیں گے کہ اس سے آنکھوں کے اوپر کے باریک ٹیشوز جلتے ہیں, پھٹتے ہیں, اندھا ہونے اور نابینا ہونے کا ڈر ہے تو ہم مان جائیں گے. کیا ہم کوئی بات حکمت سمجھ میں آئے بغیر نہیں مان سکتے؟ اور صحابہ کرام نے کیا اتنے ہی سوال پوچھے تھے تبوک کے لیے جاتے ہوئے اور بدر میں نکلتے ہوئے؟ फायदा नुकसान, ना जाए तो क्या, हलाल है हराम है, फर्ज है सुन्नत है, तो कोई तो एक ऐसा इशू हो जिस पे आप कहें कि समय ना बताना, हिकमत समझ आ जाए या ना आए मैं तो मान गई। कितनी को खूबसूरती होती है, मैं अक्सर सिस्टर से ही पूछती हूँ, आपको अल्लाह ने सर से पांव तक नुक सुख से बनाया, कैसे आंखें हाथ कान दी, कोई एक चीज डिसऑर्डर्ड होती तो क्या वो चार बाल जो करीब से दिखते भी नहीं उसको बुनियाद बना उससे नाराजगी क्यों लेनी है। और देखिए मैं इसकी कोई तावील नहीं कर सकती कि लानत के लफ्ज से क्या मुराद है, बस इतना मुझे पता है कि रहमतों से दूरी है, दिल का सुकून चला जाता है, तरह तरह की बीमारियां सामने आती हैं और इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हैं, और चेहरे पे पक्का पन आ जाता है, बड़ी बड़ी लगती हैं लड़कियां, होशियार और चालाक लगती हैं, पक्की पक्की लगती हैं। क्या आप मैं खूबसूरती के लिए इतने कॉन्शियस हैं? जो मर्जी हम करेंगे, कल कोई ऐसी क्रीम निकल आती है जो है ही पिग के गोश्त से बनी हुई तो लगा लेंगे क्योंकि हम खूबसूरत लगेंगे। क्या खूबसूरती इतना बड़ा बुत है? और क्या खूबसूरत लोग बड़े खुश होते हैं और खूबसूरत औरतें बड़ी खुशकिस्मत होती हैं? क्या खूबसूरत औरतों के शौहर उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं? और बात सुबह तो वो लोग भी करते दिखते हैं ऐसी चीज़ों में जिनका करना ना करना एक बराबर। तो अपने लिए यहाँ एक ही बात मांगे कि अल्लाह तौफीक दे, मैं ना पूछूँ इससे हिकमत क्या है, और यहाँ बीच में निकाल लें, इधर से उतार लें, उधर से लगा लें। बात लोगों ने फिर ये भी की शेप देना मना है, किसको कहेंगे आप शेप देना? आप पार्लर में नया नया काम करने लिए आपकी शेप बदल दे, वो ज्यादा काट दे कम कर दे तो क्या वो प्लकिंग नहीं रहेगी? ये अंदर की बातें हैं, और यकीन करिए इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी जुरत चाहिए। आप कहते नहीं नजर आते हैं, इस वक्त आपको मेरे और मुझे आपके दिख रहे हैं, आप इससे ज्यादा करीब एक दूसरे से क्यों होती हैं कि आपके बाल भी दिखे? सनशाइन में दिखते हैं, सनराइज में, बाहर तो आप चेहरे पे निकाब कर ले। और पार्टियों में यकीन करें इतनी मोटी कोटिंग की होती है स्किन के ऊपर बेस की कि वो हैं तो वो भी नहीं नजर आते। जी आप हजरत, आपने कितनी दफा हजरा को देखा? बीसियों के सैकड़ों बार देखा होगा ना, 200। कभी आपको ख्याल आया कि इसकी भवें नहीं बनी हुई तो ये अच्छी नहीं लग रही या ये देखने को दिल नहीं करता? पिछले 2 साल में कितनों ने नोट भी किया ये बात कि ये भवें नहीं बनाती, या बनाती हैं तो हाथ खड़े करें। नो वन केयर्स, सच्ची बता रही हूँ, ये सिर्फ अंदर का भूत होता है। जी इधर से आप, बिल्कुल, तो क्या इरम की शक्ल नहीं अच्छी लगती? और अगर अच्छी नहीं लगती तो ना लगे, जिसने शक्ल देख कर आना है वो ना आए। असल यही बात है, बहस करें, सवाल जवाब पूछें, फतवे पूछें, सेकंड थॉट, थर्ड थॉट, उसने ये कहा, क्या हमारा यही नसीब है? क्या हम सहाबा की तरह आंख का इशारा नहीं समझ सकते? सहाबा तो बहुत ज्यादा फतवे नहीं लेते थे ना। बाकी प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो सिर्फ उस वक्त मुश्किल लगता है जब नया नया आप ये काम छोड़ते हैं, प्लकिंग करना, क्योंकि एक एक बाल को बारीक बारीक रूमों में से साथ निकाल दिया जाता है, तो शुरू में ऐसे लगता है कि जो भी बाल आ रहे हैं वो बिल्कुल एकदम खड़े हो रहे हैं, बहुत नुमाया हो रहे हैं। थोड़ा सा सब्र करें, निकलने दें। शुरू में वो खड़े होंगे, 2-4 दिन के बाद ज़रा से लंबे होंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर जब उसके साथ वो रेशे के बाल दोबारा आ जाएंगे वो ब्लेंडिंग होगी। और इन द मीन वाइल मैंने अक्सर साथियों को कहा ब्लीच कर लें, ब्लीच में कोई गुनाह नहीं है। आप ब्लीच करते हैं तो थोड़े एहतियात से, अगर आपको इन जगहों पर बाल लगते हैं तो आप उनके ऊपर ब्लीच कर लगा लीजिए। एक आध दफ़ा करने के बाद यकीन करें आपको एहसास ही नहीं होगा। और ये पूछिए खुद से, सब कुछ भी कर लूँ और आंखें ही ना देखें फिर क्या होगा? तो अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी के तौर पे अगर इंसान इसको छोड़े, और यकीन करे चेहरे पे मासूमियत रहती है इसके करने के बाद, एक जैसे वो होशियार किस्म की औरत होती है ना, उस किस्म की कैफियत है। इसमें से कुछ भी ना हो बस नहीं करना तो नहीं करना, अल्लाह का हुक्म है। जिसने मुझे आपको पैदा किया क्या उसका इतना भी इख्तियार नहीं है? हम अपने बच्चों पे अपने कितने हक जमाते हैं, तो अल्लाह का हक तुमसे बहुत ज्यादा है। फिर इसी तरह अगली चीज, मसला नंबर 84, गैर महरम मर्दों को रिझाने के लिए खुशबू लगाने वाली औरत का गुना जिना के बराबर है। अनिल अशरी रदी अल्लाह अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استاترت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية। हज़रत अबू मूसा अलशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाए और गैर महरम मर्दों की महफिल में जाए ताकि वो इसकी खुशबू सूंघें तो वो जानिया है। इसे निसाई ने रिवायत किया। आप कहते हैं हम इस सोच से तो नहीं लगाते। देखिए, ना बहस में पढ़ें ना मुबहसे में पढ़ें, आसान सा एक असूल समझ लें। आराइश और ज़िबाइश की बातें ना, अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस का खुलासा, मर्दों के लिए वो ज़िबाइश जायज़ है जिसमें रंग दबा हुआ हो और खुशबू खुली भी हो। यानी मर्द लिपस्टिक नहीं लगा सकता, चेक्स पे ब्लश ऑन नहीं लगा सकता, क्यों? कि उसमें रंग होता है। पर मर्द तैयार हो रहा है, अच्छी से अच्छी खुशबू, तेज से तेज खुशबू लगा सकता है, कोई हरज की बात नहीं। औरत का मामला इससे ऑपोजिट है। फरमाया कि मा ज़ाहर लौनुहु, जिसका रंग जाहिर है, पर खफिया तीबुहु, तीब या खुशबू दबी हो। हर कॉस्मेटिक में थोड़ी बहुत खुशबू तो होती है, जो खुशबू सिर्फ आप तक है इट्स ओके। आपने कोई भी ऐसा मेकअप इस्तेमाल किया कि अगर हल्कापन है उसमें, हल्की सी कोई एक फ्रेशनेस है, आप हैं या आपके बहुत करीब है, इट्स फाइन। मना क्या है औरत को वो खुशबू के जो अंदर आने से पहले या आने जाने के बाद भी काफी देर तक उसका असर दे, फैली हुई खुशबू, बिखरी हुई खुशबू, जिसको आप देखिए परफ्यूम्स की सूरत में आप जानते हैं। अब आप कहते हैं मर्दों में तो हम जाने की नीयत से नहीं करते, हम तो औरतों के लिए करते हैं, तो मर्दों को तो ये बात नहीं पता। देखिए दो तीन चीज़ें, एक आगे भी आ रही है, खुशबू जो है ना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आप जानते हैं खुशबू अच्छी से ही बंदे के जज्बात उभरने लगते हैं। किसी से स्मेल आ रही हो, पसीने की स्मेल हो, उससे दूर हटने को दिल करता है। करें क्या फिर, क्या औरत गंदी रहे? इसमें फिर एक और हद है, जिस्म के ऊपर कोई खुशबू लगती है ना, जैसे इतर होते हैं, ऑयल है, आजकल तो बहुत कुछ है, जिस्म पे लगा लें। अब आपने जाहिर है उसके ऊपर कपड़े पहने, फिर कपड़ों के बाद बाहर जाते हुए आप अबाया पहनते हैं, हिजाब पहनते हैं, आप जितनी भी कवरिंग करते हैं वो अंदर रहेंगी, इट्स ओके। बहुत हुआ कोई आपके करीब आएगी, दोस्त सिस्टर कोई बात करेगी, मिलेगी, उसको मिलेगी ना, इट्स ओके। लेकिन कपड़ों के ऊपर खुशबू लगाना इसको छोड़ दें। देखिए अगर आप शावर लेते हैं, जब भी घर से निकलें या घर में आएं, दोनों में चूज कर लें या दोनों ही कर लें, अगर आप फ्रेश वाटर से शावर ले लें, हल्का सा सोप लगा लें और साफ सुथरे हल्के फुल्के ऐसे कपड़े जिसमें स्मेल ना आई हो वो पहन ले, तो आपसे कभी बू नहीं आएगी। बू अमूमन उनसे आती है जो शावर नहीं लेते, चाहे गर्मी है या सर्दी है, मान लीजिए इस बात को। और पसीना आया हुआ ऊपर खुशबू लगा लें, वो एक और ही चीज़ बन जाती है। जितना मुमकिन तरीके से साफ सुथरे रहें, फिर अपने अंडर आर्म्स के बाल साफ रखें, आप हर वो चीज़ खाने से अवॉइड करें जिससे ऐसी स्वेटिंग हो, बात करें तो मुंह में से खाने की बात है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ नहीं होगा। फिर मैंने एक और चीज़, बल्कि इस मस्जिद में भी आने वाली बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो सोमालिया से होती हैं, उनके पास फील किया है कि वो चूँकि बाहर बड़े बड़े हिजाब स्कार्फ पहनती हैं, अब ज़ाहिर गर्मी में आना, धूप में जाना, बसों में आते पैदल पसीना तो आएगा ना, तो आप कभी भी उन सिस्टर्स को मिले ना, तो उनके पास से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मैंने देखा कि अक्सर मस्जिद में अंदर आने के वक्त जब अपने जूते वगैरह उतारे उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इनसाइड कर सकते। देखिए जिसने करना है उसके लिए रस्ते बहुत से हैं, और जिसने नहीं करना वो कहेगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर दुल्हन से इतनी खुशबूएं आ रही हैं और इससे भी आ रही हो तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। अब आगे एक और चीज़ है जो इंडिकेट करती है, क्या? फैशन के तौर पर ऊंची एड़ी का जूता पहनना यहूदियों की इत्तबा है। अब तो लगता है अलमारियां वैसे ही हल्की हो जानी है, इतना कुछ तो डिस्कस हो गया, लेकिन क्या करें, हम हुक्म के बंदे में, मेरी आपकी मर्जी नहीं है, नहीं मान सकते, दुआ करें मानने लगेंगे ना, इस पे कोई किसी को बुरा कहे ना भला कहे ना टॉन्ट करें, अपने लिए देख लें जो कर सकते हैं वो कर लें, दैट्स इट। अन अबी सईद अल-खुदरी रदी अल्लाह अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला कानत इमरातुन मिन बनी इसराइल। अब आप देखिए कि पिछले दौर की औरतों की मिसाल है। قصيرةٌ تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاتم من ذهب مغلق مطبق ثم خشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک چھوٹے قد کی عورت تھی جو اپنی دو لمبی سہیلیوں کے ساتھ چلتی تھی، چنانچہ اس نے اونچی ایڑی کی دو جوتیاں بنوائیں تاکہ اپنی سہیلیوں کے برابر نظر آئے، اور ایک انگوٹھی بنوائی خولدار بند ہونے والی، کوئی کور ہوگا، اور اس میں مسک بھر دی، یعنی عرب لوگ جیسے ڈھکن سے لگا کے اس میں مسک لگا کے تو وہ پہنتے ہیں، تو پھر جب اس کو تھوڑا سا کھولیں تو اس میں سے خوشبو آتی ہے، جو بہت عمدہ خوشبو ہے. اونچی ایڑی کی جوتیاں پہن کر جب یہ اپنی دونوں سہیلیوں کے درمیان چلی تو لوگ اسے پہچان نہ سکے، اور اس عورت نے اس خوشی میں اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کیا، اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، پہلے دور کی عورتوں میں سے کسی نے کیا، اور وہ پہلا دور جو تھا وہ بنی اسرائیل کی عورت تھی. تو اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد کیا ہے، اگر کوئی آج ایسا کرتا ہے تو یہ ان کی مماثلت ہے، اور پیچھے ہی پڑ چکے ہیں کہ غیروں کی مماثلت سے بچنا ہے. خوبصورتی کے لیے چہرے سے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی دونوں ملعون ہیں. عن عبداللہ قال لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامساتی والمتنمساتی والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جسم گودنے والیاں، گودوانے والیاں، چہرے سے بال اکھاڑنے والیاں اور اکھڑوانے والیاں، اور دانتوں کو کھلا کرنے والیاں خوبصورتی کے لیے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والیاں ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعنت الواصلۃ والمستوصلۃ والنامسۃ والمتنمسۃ والواشمۃ والمستوشمۃ من غیر داء. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوڑا لگانے والی اور لگوانے والی، چہرے سے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی، جسم گودنے والی اور گودوانے والی پر لعنت کی گئی بغیر کسی بیماری کے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ جتنے ہم نے ٹاپکس پڑھے ہیں شاید ان میں سے سب سے مشکل یہ ٹاپک لگاؤ. میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر دیتی ہوں کہ اسلام آپ کو مجھے کس چیز سے روکتا ہے، کیونکہ اب اگلا حصہ بڑا خوبصورت ہے، اس کو سن کر آپ خوش ہوں گے کہ کیا جائز ہے. تو آپ دیکھیے کہ علم لینے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جائز اور ناجائز کی حدیں واضح ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے بالوں میں نقلی بال ملانا منع ہے. کیوں منع ہے؟ دھوکا بھی ہے، فخر اور تکبر بھی ہے. اور پلکنگ منع ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. دانتوں کو کھسوانا، دانتوں میں سوراخ لگانا، بعض لوگ دو دانتوں کو کھسواتے ہیں پھر اس کے بیچ میں ہلکے سے بیٹس یا کوئی پرل رکھوا لیتے ہیں خوبصورتی کے لیے. آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں نقصان دیتی ہیں جسم کو. یہ تو اس دور کے فتنے تھے نا، آج کے دور میں تو لوگ اس سے بھی بڑھ گئے، ناک کٹواتے ہیں اپنی. پہلے تو ڈرتے تھے ناک کٹانے سے، اب عورتیں اپنے یہ جیسے ناک کی بون تھوڑی سی کہیں سے بڑی ہے چھوٹی ہے، اندر سے بون کو کٹوا کے بالکل پتلی ناک کراتے ہیں. اور اس کے بعد میں کیا افیکٹس ہیں، میں آپ کو سٹوری سناؤں چند لوگوں کی تو آپ عبرت کے مارے میرا خیال ہے کہ کبھی اس کا تصور بھی نہ کریں. جسم کے اندر کٹ لگوا کے سلیکون کی تھیلیاں رکھواتے ہیں اپنے جسم کو ابھار والا کرنے کے لیے، اور کسی کی وہ تھیلی پھٹ گئی اور اس کے بعد اندر کیا کچھ ہوا کوئی نہیں جانتا. ان ساری چیزوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب ہم بیوٹی کانشیس ہوتے ہیں. جو بنا دیا اس نے بنا دیا، جیسا بنا دیا اس نے بنا دیا. دعا یہ کریں قسمت اچھی ہو. دوسری بات دیکھیے کہ اگر فطری طور پہ خوبصورتی ایک عورت کا ویک پوائنٹ ہے تو تھوڑے دن کی بات ہے، جنت کی عورت تو بہت خوبصورت ہوگی. صرف اس وجہ سے کسی کو جنت سے محروم کر دیا جائے کہ تو دنیا میں اللہ کی دیوی شکل پہ راضی نہیں ہوئی اب جا، تو کیا اچھا لگے گا؟ اور جب آپ احادیث کی روشنی میں جنتی عورت کی خوبصورتیاں پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے جلدی سے یہاں سے نکلیں اور وہاں پہنچ جائیں. کرسٹل کی ڈالز، اور بات کرتی ہیں تو مسکراتی ہیں، اور خوشبو والے جسم ہیں، اور جسم کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایسے کر دیا جیسے کرسٹل کے اندر سرخ رنگ کی ڈوری ڈالیں تو چمک ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے اگر جنت کی عورت آسمان سے جھانک لے تو اس کے چہرے کی چمک کے آگے سورج کی چمک کم ہو جائے. या कोई फेशियल करवा के ही चमक आएगी, और उसका दुपट्टा और दुपट्टे का कोना पल्लू लटक जाए तो उस पर लगे हुए हीरे मोतियों के आगे सूरज चांद की रोशनी दब जाए, तो क्या खूबसूरती ही सब कुछ है। फिर एक और आपको सोचने का नुक्ता सिखाती हूँ, कोई तकाबुल नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप अपने ऊपर लेकर सोचें, दुनिया में आपको मुख्तलिफ कल्चर के मुख्तलिफ रंग ढंग के लोग दिखते हैं कि नहीं दिखते। हम देसी लोग तो इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें मॉडरेट रखा, ना हम बहुत गोरे और ना बहुत काले। और आपने देखा होगा कि बहुत गोरे रंग में भी इतनी कशिश नहीं होती और बहुत काले में भी नहीं। जब मुझे आपको रख ही मॉडरेट पे दिया तो आप कहते नहीं गोरा ही कर देता, तो अगर काला कर देता, ये सवाल है। अब अगर हम होते ही उस कल्चर से जिसमें होंठ इतने मोटे होते, बद्दे होते, हम मोटे ताजे होते, वो भी तो औरतें हैं ना, उनके रंग इतने स्याह हों कि जिसके आगे यानी फीचर्स भी ना दिखे और आप अपने आप को देखें तो आप उसके आगे कितनी हसीन है। तो खूबसूरती को डिस्कस करना छोड़ दें। लेकिन आज राह गुजरते देखिए, सिर्फ बालों के लिए पूरी पूरी दुकानें हैं, ऑल अबाउट हेयर्स, ऑल अबाउट नेल्स और ब्यूटी पार्लर। ये एक खास हद तक सब ठीक है, जायज ना जायज को अलग करके एक खास हद तक है। आप अपनी जिस्म की हिफाजत के लिए कुछ करते हैं, आप केयर के लिए करते हैं, आपको फेशियल चाहिए, आप स्किन को पॉलिश करते हैं, एक खास हद तक ये ठीक है। लेकिन इसका ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, हर वक्त लुक्स के गुलाम बने रहेंगे तो फिर काम कब करेंगे। ठीक है।